वला तकरबु ज़िना, और जिना के करीब ना जाना। अब देखिए, ये एक एक करके हमें बताया जा रहा है कि माशरे में कौन से ऐसे जराइम हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो माशरे को आलूदा कर देती हैं, इसको पलूट कर देती हैं। ये है पोल्यूशंस। एक पाकीज़ा माशरा कायम करना, एक इस्लामी माशरा जब कायम करना है, तो ये उसकी रहनुमा उसूल है, ये उसकी लीडिंग प्रिंसिपल्स हैं। इसके ऊपर एक माशरे की बुनियाद रखी जानी चाहिए कि जिना नहीं करना, ये नहीं कहा गया। लोग कहते ना, हम कौन सा जिना कर रहे हैं, जिना नहीं करने का तो है ही नहीं है। है वला तकरबु जिना, करीब भी नहीं जाना जिना के। क्यों क्यों नहीं करीब जाना? इन्नहु काना फाहिशा, क्योंकि ये बेहयाई है, ये बेहयाई है। और हदीस में आता है, जब इंसान जिना करता है उसका ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। जब वो इससे बाज आ जाता है तब उसका ईमान वापस आता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें हया नहीं है फिर वो कुछ भी करे, यानी जब हया नहीं ना हो जाए, हया इंसान से निकल जाए, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, फिर कुछ रह ही नहीं जाता उसके लिए। और पीछे औलाद की बात आई, आगे देखिए जिना की बात आ गई, क्योंकि जो जिना से औलाद होती है तो इंसान उसको कत्ल भी करता है, फिर कहता है औलाद ही ना हो जाए कहीं। तो आज आप देखें कि जहां पे जिना आम है वहीं पे सबसे ज्यादा एबॉर्शन के लिए फाइट होती है कि एबॉर्शन हमारे लिए जायज कर दो, एबॉर्शन जायज हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ यहाँ जब हम कभी कहीं कभी किसी के साथ ताल्लुक करेंगे तो जाहिर है फिर इतने बच्चे लेके किधर घूमेंगे जिनका ना नसब पता ना कुछ। तो अल्लाह ताला ने जिना के रास्तों को, उसके जराए को, जो चीजें जिना तक लीड करती थी ना, उन रास्तों को बंद कर दिया। यानी ऐसी सारी बातें, ऐसी सारी एक्टिविटीज, ऐसे सारे माहौल, ऐसी सारी गैदरिंग्स, ऐसे सारे चांसेस जहां आगे जाके जीना तक कोई इंसान पहुंच सकता है, उनको बंद कर दिया गया। बात समझ आई? कि जब कहा ना वला तकरबु जीना, जीना के करीब भी नहीं जाना, यानी वो रास्ता जो लीड करता है जीना की तरफ, उस रास्ते पे ही नहीं जाना। क्यों क्यों नहीं? रास्ते से क्या फर्क पड़ता है हम कौन सा जिना कर रहे हैं? इसलिए कि शैतान जो है ना, वो इंसान को एक दफा ही नहीं कहता था कि जिना कर लो। जब आगे पीछे हम पढ़ चुके हैं, बोला तभी खुतुआत शैतान, खुतवा कहते हैं ना, कदम जो इंसान रखता है, कदम कदम एक चलता है, स्टेप बाय स्टेप शैतान लेकर जाता है उस तरफ। वो हर चीज पे कहते थे, लो इससे क्या फर्क पड़ता है, ये कौन सा तुम जिना कर रहे हो, इससे क्या हो जाता है। ऐसे करते करते वो उसको जिना तक पहुंचाता है। वो पागल तो नहीं कि पहले दिन ही कह दे जिना कर लो। आपने वो राहिब की कहानी सुनी होगी, लंबी कहानी है, इस वक्त नहीं है टाइम हम इसके ऊपर जाएं, किस तरह वो एक राहिब था, कैसे उसको शैतान ने बहकाया कि वो जो भाई अपनी बहन को उसके पास छोड़ गए थे, खुद जिहाद पे निकल गए, उन्होंने कहा इसका केयर करो, और तो कहीं भी नहीं छोड़ के जा सकते, चलो ये राहिब है इसके पास छोड़ जाते। किस तरह शैतान ने ना स्टेप बाय स्टेप, की कोई बात नहीं, वो अकेली लड़की है, उससे बात तो कर लो, उसका हाल है वाल तो पूछ लो, अच्छा चलो अब बाहर से पूछ रहे, बाहर से खाना खा रख के चले जाते हो, आखिर वो अकेली, उसको भी तो कोई कंपनी चाहिए, तुम उसके पास थोड़ी देर बैठ के बात कर लोगे तो कोई हरज नहीं। वो बैठने लगा, फिर आगे से आगे इस तरह ये कर लो ये कर लो, करते करते जिना तक पहुंचा दिया उसको, हत्ता कि उसने उसे जिना कर लिया। तो देखिए, ये शैतान का एक बहुत बड़ा हरबा है कि वो आखिरी स्टेप तक नहीं लेकर जाता जब तक कि पहले स्टेप्स नहीं क्रॉस करा लेता। पहले स्टेप्स कराता है तो आखिरी तक इंसान पहुंचता है, और वो उनपे जब बढ़ता जाता है ना, उसको पता भी नहीं चलता कि वो वहां तक पहुंच गया। इसीलिए अल्लाह ताला ने रास्ते ही बंद करने को कह दिया गया, कि वो रास्ते जहां जो जिना के रास्ते हैं वो बंद हैं। और हर जमाने में इसके बहुत से रास्ते रहे, मगर जितने आज है ना रास्ते, उतने पहले कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। कि कोई अपने बिस्तर में लेटा हुआ, लिहाफ के अंदर है, या बाथरूम में है, या कोई किसी ऐसी जगह पे जहां पे कोई भी नहीं, और उसके हाथ में एक मोबाइल फोन है ना, और वो ही काफी है उसके जज्बात को भड़काने के लिए। आप किसी को आज जरा सा भी इससे मोबाइल हटाने की कोशिश करें, फिर देखेंगे उसको ऐसे लगेगा जैसे उसकी जान निकल गई। इसी तरह और भी चीजें, आप के मिक्स गैदरिंग के रास्ते क्यों बंद किए गए, क्यों कहा गया? लोग कहते हैं कहां पे कुरान में लिखा हुआ है मिक्स गैदरिंग, जब आप एक के मुंह के आगे दूसरे को एक ही मेज पे बिठा देंगे, वो बैठा हुआ है और आगे गैर महरम औरत बैठी हुई, उसकी नजर उसके ऊपर पड़ेगी, जब उससे बात करेगा तो उसकी चेहरे के ऊपर नजरें गड़ेंगी, और वो पूरी बन संवर के बैठी हुई, किस चीज का रास्ता आप खोलते हैं? एक नामहरम पे नजर डालना जो होता है, पहले तो नजरों की हिफाजत हो ना, नजरों की हिफाजत करो, अपनी समाअत की हिफाजत करो, अपने दिलों की हिफाजत, क्योंकि नजर पहला तीर है, नजर से पहला काम शुरू होता है। निगाह जब भटकती है तो जिना का रास्ता खुलता है। तो आज कहते हैं नहीं जी हमें क्या, असल तो पर्दा ही नजरों का है, वो वैसे तो पर्दे की जरूरत ही नहीं। अब देख लें जितने भी मॉडर्न ये, वो कहते हैं नजरों का पर्दा है, नजरों के पर्दे से, वाकई नजर को पर्दा चाहिए, वो डिफरेंट सेंस में कह रहे होते हैं, कहते हैं नजर का पर्दा है, तर पर्दा करने की जरूरत नहीं, हमारी नजरों में ही पर्दा है, हया इतनी है कि नजरों में ही हया। तो सहाबा और सहाबियात तो सबसे ज्यादा हया वाले थे, फिर सहाबियात को क्या जरूरत थी कि वो पर्दे करती? हाँ, वो भी नामहरमों के साथ कभी बैठी भी, आपको कहीं पढ़ा है आपने कि वो इस तरह से बैठी हो? फिर आप देख लें मिक्स गैदरिंग ही नहीं, बेपर्दगियां, चैटिंग ऐसे लोगों के साथ जो गैर महरम है, फोन पे बातें करना, बन समर के नामहरमों के सामने जाना, ऐसी पार्टीज जिसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है, अलग नहीं है, आप कह के देखें किसी को कि आप अलग अलग बिठाएं, तो लोग इतने खून खार हो जाते हैं, इस पे नाराज हो जाते हैं कि आपने ये बात ही कैसी की, यानी कि हमारे मर्द क्या कोई खराब है जो आप ये बात कह रहे हैं? और ना मर्द कहते हैं हमें एक मजा ही क्या आएगा कि जब औरत ही नजर ना आए। तो ये बदकारी का कल्चर है जो आज हमने रिवाज दिया, और इनको हमने ही खत्म करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है वला तकरबु जीना, एक बात कह के ना तीन अल्फाज के अंदर ये सारे कल्चर्स जो आज हमने बनाए हुए इन सबको खत्म कर दिया। तो ऐसे मिक्स्ड कल्चर, ऐसे मिक्स्ड गैदरिंग्स, ऐसी फिल्में, ऐसा लिटरेचर, ऐसे ड्रामे जिनसे इंसान के जिनसी जज्बात को उभारा जाए, मर्द हैं वो खूबसूरत हसीन चेहरों को देख रहे हैं, औरतें वैसे इतनी खूबसूरत नहीं, लेकिन उनको बेहतरीन बना के और पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर लेंस लगा के उनको खूबसूरत तरीन करके और क्लोजअप्स लेके जब दिखाया जाता है उनके चेहरे, तो क्या पूरे जिस्म की एक एक चीज नुमाया की जाती है, वो उनको जब आई आदमी देखेगा तो उसके अंदर हया क्या रहेगी? औरतें मर्दों को देख रही हैं, वो समझती है हमारे लिए हर चीज ही जायज है देखना, और मर्द के लिए नाजायज है ना महरमों को देखना, हम बेशक देखते रहे, उनके शौहर तो जैसे भी हो मगर स्क्रीन के ऊपर एक हैंडसम आदमी नजर आ रहा है, गुड लुकिंग नजर आ रहा है, क्यों हम देखें ऐसी चीजें? और उसको हम कहते हैं ये एंटरटेनमेंट है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला जिना आंखें करती हैं, आंखें फरमाया जिना करती है, कान जिना करते हैं, कानों से सुनना, आंखों से देना, शर्मगाह का तो फरमाया कि वो तो तस्दीक करती है, एंड में जो शर्मगाह करती है ना वो तो उस सारी चीजों को ऑथेंटिकेट कर देती है, उस मगर उससे पहले सारा काम हो चुका होता है, वो स्टेप्स हो चुके होते हैं जो वहां तक पहुंचने के लिए, नजरों का जिना हो गया, कानों का जिना हो गया, इंसान का हाथ का जिना पकड़ना है, जुबान का जिना, ऐसी गंदी बातें बोलना है, तो ये सारा कुछ करा के फिर एंड में आता है वो जिसको हम कहते हैं कि ये सिर्फ जिना है, बाकी क्या आंखों का जिना कोई चीज नहीं, ये हदीस है आंखों का जिना, कानों का जिना। तो पूरे के पूरे माशरे के अंदर ये खराबी आ चुकी है, और इतनी आज आम हो गई है कि अगर कोई कहे कि ये गलत है तो वो समझा जाता है कि ये पागल है, और समझे जाते हैं कि हमारे तो पाक साफ लोगों को जैसे कुछ कह दिया। अगर हमारे माशरे इतने ही पाक साफ है, ये मुझे सिर्फ बताएं इतने ही पाक साफ है, आज तो छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो आप जानते हैं, इवन जवान लड़कियों को तो छोड़ें, जो शादीशुदा औरतें हैं उनको भी नहीं आदमी छोड़ रहा है। ऐसे एक दरिंदों वाला कल्चर बन चुका है। और इससे भी ज्यादा दुख और अफसोस की बात है कि तो मेरे पास तो केस आते हैं, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ, खानदानों में, अपने खानदानों में अपनी इज्जतों पे हाथ डालने से भी आदमी कहीं नहीं रुका, कहीं कोई रिश्ते पे भरोसा रह ही नहीं गया। तो फिर भी हम समझते हैं कि ना पर्दों की जरूरत है, ना कोई सेग्रीगेशन की जरूरत है, ना ये बेहयाई और फहाशी का लिटरेचर और फिल्में और ऐसी चीजें बंद करने की जरूरत है, ना ऐसे बेहयाई के म्यूजिक और ये सब चीजें को, इनको बंद करने की जरूरत है। कुछ भी नहीं, हम तो पाक साफ माशरा है, हम तो इतने पाक साफ हैं कि वो उस दौर से भी ज्यादा पाक साफ है हम, जिस दौर में पर्दा और लिहाज और शर्मो हया थी, उससे भी ज्यादा हम हया वाले। तो आज देख लें फिर आप अपने अखबार उठा के और अपनी खबरें उठा के और आप अपने इर्द गिर्द भी देख लें कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हम बाज नहीं आते। और इससे ज्यादा क्या बात है कि आज अस्तग़फ़िरुल्लाह ही रब्बी कि शादीशुदा औरतें भी ऐसे रिलेशनशिप्स में मुलव्वस हो गई, जो कि इंतहाई कभी बात है। अल्लाह ताला यानी ऐसे ही नहीं हुक्म दिया हुआ कि ये इंसान जो अपने पर्दे में रहे और हया के साथ रहे और एक औरत एक आदमी के साथ अकेली तन्हा ना रहे। आप सरसर ने फरमाया जिस शख्स ने किसी शादीशुदा औरत से जिना किया तो इस जानी और जानी पर कब्र में इस उम्मत का आधा अजाब होगा। तो सोचें जरा। और इस औरत के शौहर के उसकी सारी नेकियां दे दी जाएंगी, बशर्ते कि उसको इल्म ना हो कि उसकी बीवी जानी है। लेकिन अगर उसने इल्म होने के बावजूद खामोशी इख्तियार कर ली कि कोई बात नहीं, ठीक है, मेरी बीवी जो मर्जी करती रहे, उसको पता भी है कि हराम कामों में पड़ी भी है, लेकिन वो इग्नोर करता है, तो अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी, उस आदमी पे भी। क्योंकि दयूस जो है, दयूस दयूस वो होता है जो बेगैरत है। आज बेटियों को देख रहे हैं, बीवियों को देख रहे हैं, वो हराम कामों में पड़े हुए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मॉडर्न बहुत हैं। और जिसने ऐसी औरत पर अपना हाथ रखा शहवत के लिए, जो औरत हलाल नहीं है उस पे, यानी उसकी बीवी नहीं है, तो रोजे कयामत इस हाल में आएगा कि इसका हाथ उसकी गर्दन के साथ बंधा हुआ होगा। अगर इसने उसके साथ जिना किया होगा तो उसकी रान बोलेगी और रोजे कयामत उसके खिलाफ गवाही देगी, कहेगी कि मैं हराम पे सवार हुई थी, और अल्लाह ताला गजब की निगाह से उसकी तरफ देखेगा और उसके चेहरे का गोश्त गिर जाएगा, और वो कहेगा मैंने ये नहीं किया, तो उसकी जुबान उसके खिलाफ गवाही देगी, कहेगी कि मैंने ऐसी गुफ्तगू की जो हलाल नहीं थी, क्या उसकी इज्जत रह जाएगी। हाथ कहेंगे हमने हराम चीज को पकड़ा था, उसकी आंखें कहेंगी हमने हराम चीज को देखा था, उसके पांव कहेंगे हम हराम की तरफ चल के गए थे, उसकी शर्मगाह बोलेगी कि मैंने ऐसा किया था। और मुहाफिज फरिश्ता कहेगा कि मैंने लिखा था, और अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने देखा था और मैंने पर्दापोशी की थी। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे फरिश्तों इसको पकड़ो और मेरा अजाब इसे चखाओ। देखिए अब ऐसा इंसान जिसने अल्लाह ताला की हदों को तोड़ा, और सबसे बड़ा जिना का गुनाह तो उसके ऊपर है जिसने किसी महरम से जिना किया। उसके बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको कत्ल कर दो, जिसने अपनी माँ बेटी बहन या सुतेली माँ इनमें से किसी के साथ बदकारी की है, इससे भी नहीं चूक रहे। अब ये देख लेना, फिर हम कहते हैं हमारे हम एक इस्लामी ममलिकत, इस्लामी माशरा, हमारे ऊपर क्यों ऐसे मसले आ रहे हैं। अब अल्लाह ताला फरमाया वो सा सबीला, ये बुरा रास्ता है। और हदीस में आता है जिस माशरे में जिना जाहिर हो जाए और सूद आम हो जाए तो वो अल्लाह की किताब को अपने ऊपर हलाल कर लेते हैं, यानी अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं। और फरमाया किसी कौम में बेहयाई नहीं फैलती मगर ये कि उनमें अमवात आम हो जाती, मौत बहुत होती है। और फरमाया जिस कौम में जिना जाहिर हो जाता है वहां पे कहत आम हो जाता, रिस्क की कमी हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी उम्मत में मर्दों के लिए औरतों से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा। आप देख लें, बड़े बड़े मर्द औरतों की वजह से गिर जाते, वो अपने आप पे काबू नहीं पा सकते, वो अपने ऐसे बड़े बड़े जराइम कर लेते। और अगर किसी ने शादीशुदा ने किया तो उसका तो जिना और भी बड़ा है, उसका तो उसकी बुराई कमारे से भी ज्यादा बड़ी है। और अल्लाह ताला ने देखें फरमाया ना, ये अल्लाह ताला की नाराजगी का भी काम है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ये बता दिया कि ये बुरा भी रास्ता है, ये बेहयाई भी है। तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है सरीहन जो ये काम करता है, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करे, जबकि अल्लाह ताला ने 4 तक निकाह करने की इजाजत दे दी आदमी को, फिर भी अगर वो ये बुराई के अंदर मुलव्विस होता है, तो मेराज की रात पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मर्दों और औरतों को देखा था कि आग उनकी तरफ आ रही थी, और जब वो आग उनकी तरफ आती थी तो वो चीखे मारते थे, चिल्लाते थे, वो लटके हुए थे, और आग का शोर इतना ज्यादा था। आपसे सब ने पूछा, ये कौन है? नंगे मर्द और औरतें थे लटके हुए। फरमाया, ये जिनाकार मर्द और औरतें। इसलिए जो अल्लाह ताला का हुक्म है उसको समझना चाहिए, ये इस चीज के ऊपर बहसें नहीं करनी चाहिए, ये कहाँ मना है, ये कहाँ कौन से कुरान में लिखा है, ये कहाँ ऐसे है। जब कह दिया गया वला तकरबुल जिना, तो इसमें सारी ये चीजें आ गई जो आज हमने कल्चर के नाम पे कहीं कहीं हमारी हमारा तो ये रिवाज है, हमारी तो ये ट्रेडिशन है, हमारा तो ये ऐसे है, हमारे तो घरों में ऐसे ही होता है, इस नाम के ऊपर हमने कर ली, कहीं मॉडर्निज्म के नाम पे। एक तफसीर में लिखा हुआ है कि दमिश्की बयान करते हैं कि मैं के जहन्नमी जो है इंतहाई ताफुन वाली बहुत बदबूदार बदबू जो होगी महसूस करेंगे, वो कहेंगे हम इससे ज्यादा ताफुन वाली बदबू इससे पहले कभी हमने महसूस नहीं की, ये क्या चीज की बदबू है? तो उनसे कहा जाएगा, ये जानियों की शर्मगाहों की बदबू है। यानी जहन्नमी भी उनसे तकलीफ में होंगे, इतनी गंदी बदबू होगी उनकी। जानी के ऊपर अल्लाह ताला का की नाराजगी है, और इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती है? कुरान में ऐसी बातें करती है, फिर भी अगर हमारे यहाँ ऐसे पर्नोग्राफी की चीजें देखी जाएं, ऐसे ऐसे नॉवल पढ़े जाएं, ऐसी कहानियां पढ़ी जाएं, ऐसी बेहयाई की बातें डिस्कस की जाएं, और बेहयाई की बात करने वाला भी गुनाहगार है और उसको फैलाने वाला भी गुनाहगार है, उतना ही गुनाह में शामिल है जो आगे फैलाता है उसको। ये एक जगह जब पूछा गया, मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें बयान फरमाई हैं, कि एक जगह जब पूछा गया कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह कौन है, कौन सा है, तो शिर्क बताया गया, और उसके बाद बताया गया जीना। अल्लाह ताला माफ करें, और अल्लाह ताला ऐसे हर काम से महफूज रखे जो जिना की तरफ ले जाने वाला काम। लोग जिना तक पहुंचते हैं, लेकिन उन कामों में बहुत सारे लोग मुलव्वस होते हैं जो जिना की तरफ ले जाने वाले होते हैं, और इसीलिए इसके नतीजे हैं जो आज हम भुगत रहे हैं। फिर हम पूछते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये इतनी ये इस तरह से जो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, ये क्यों हो रहा है? तो इसकी वजूहात है, और इसकी वजूहात हमने खुद क्रिएट की नहीं। हदीस में आता है जहन्नुम में एक वादी है, उसमें एक सांप है, उसमें सांप है, हर सांप जो है ऊंट की गर्दन से ज्यादा मोटा है, वो उसको डसेगा जो नमाज को छोड़ने वाला। और उसका जहर जो है उस शख्स के जिस्म में 70 साल तक जोश मारता रहेगा, फिर उसका गोश्त गल जाएगा। और जहन्नुम में एक वादी है जिसका नाम जुब्बुल हुज़्न है, हुज़्न का कुआं, गम का कुआं। उसमें सांप है और बिच्छू है, और बिच्छू जो खच्चर के बराबर है, जिनके 70 डंग है, हर डंग जहर से पूरा है। फिर वो जानी को डंग मारेगा और अपना जहर इसके जिस्म में उंडेल लेगा, जिसकी तकलीफ में वो 1,000 साल महसूस करता रहेगा। फिर उसका गोश्त गल जाएगा, उसकी शर्मगाह से पीप और लहू बहता रहेगा। क्यों हम ऐसे गुनाह करके ऐसे चीजों के अंदर अपने ऐसी चीजों के अपने आप को करीब करें? इसलिए ही गैर महरम औरत को छूने से भी मना किया गया कि गैर महरम औरत को छूने से बेहतर है कि मर्द को जो है ना उसके सर में लोहे की सीख चुबो दी जाए, यह हदीस है। फिर भी हैंडशेक्स किए जाते हैं, फिर भी औरतें मर्द जो डॉक्टर्स हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेके अकेले उनके साथ बैठी होती हैं, जबकि उनके पास मौजूद हैं औरतें भी, लेकिन वो मर्दों के पास शौक से जाती हैं। कहती है हमने डिलीवरी मर्द से करानी है, वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा प्रोफेशनल है। और फिर आप देखेंगे जो वाकयात होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये रोल प्ले करती हैं वहां तक ले जाने का, वो तो रिजल्ट है सिर्फ, वो उससे पहले ये सारे स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स से ही बचें कि अल्लाह ताला से ज्यादा हमारा कोई हमदर्द नहीं, और उससे ज्यादा हमें कोई और जानने वाला नहीं। और वो जानता है कि मर्द की खसलत क्या है और औरत की क्या है, औरत की कमजोरी ही क्या है, मर्द की खसलतें क्या है। इसलिए मना कर दिया गया कि कोई मर्द किसी औरत के तन्हाई में ना मिले, इसलिए मना कर दिया गया कि ये वाले ससुराली रिश्ते भी तुम्हारे लिए गैर महरम है। हम कहते हैं कि नहीं, भाभी और देवर हैं वो बहुत क्लोज होने चाहिए। मैंने कि कहाँ से हम ले आए हिंदुओं के कल्चर से, और ये जो साली और बहनोई हैं वो इतने क्लोज हैं। जो साली आधी घर वाली है, देवर को लेके भाभी की गोद में बिठा दिया जाता है, उसको मौत कहा गया, उसको गोद में बिठा रहे हैं। आप सरसर ने तो ये फरमाया कि शौहर की गैर मौजूदगी में औरतों के पास मत जाओ, तो शैतान तुम में से किसी एक के अंदर इस तरह गर्दिश करता है जैसे खून गर्दिश करता है। आदमी शौहर के दोस्त हैं, औरतें सोचती हैं ये शौहर के नहीं दोस्त, हमारे भी दोस्त हैं, क्योंकि शौहर के दोस्त हैं हमारे तो भाई हो गए। भाई वही आपका जो आपका सगा भाई है, बाकी सब गैर महरम है। लेकिन ये बात कह दीजिए तो कहते हैं आप हमारी नियतों पे शक करते हैं, आपने हमें ऐसा समझा था। तो ये कुरान में तो फिर ये आने की जरूरत ही नहीं थी, सारे ही भाई भाई हैं बस। फिर ठीक है, आज देखें कि ये LGBT का मसला कितना चल गया। इसलिए औरतें अभी को भी कहा गया कि अपनी नजरें नीची रखें, मर्दों को भी कहा गया एक चादर में दो औरतें ना सोएं, दो मर्द ना सोएं। अपने सतर को औरतों के सामने भी ना खोलो, सतर किसी के सामने भी नहीं खोलना। फिर आप देखें ऐसे गाने बजाने हैं, ऐसी चीजें हैं उसके अंदर, इस तरह से ऐसे ऐसी मौसीकी और ऐसी शायरी है कि जो इंसान के जज्बात को भड़का दे। और फिर हम कहते हैं ये मौसीकी रूह की गिजा है। किधर किधर आप देख लें ना कि कहाँ से हम बचे हुए हैं, कहीं से भी नहीं बचे हुए। फिर आप चाहते हैं कि एक पाकीज़ा माशरा हो, कैसे होगा पाकीज़ा माशरा? हम खुद इसको फ्यूल दे रहे हैं, हम खुद आग तो लगी होती जाहिर ही। अल्लाह ताला ने एक जज्बा रखा है इंसान के अंदर, और उसकी तस्कीन का सामान भी रखा उसकी बीवी में, आदमी के लिए उसकी बीवी में रखा। लेकिन जब हर तरफ इस आग के ऊपर तेल डालने वाली चीजें हैं, वो आग जो बुझनी थी घर में, उसको सब तरफ से फ्यूल मिल रहा है, तो क्या होगा फिर? हर तरफ आप अपने मुल्कों में देख लें, हर तरफ इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हैं जिसमें औरतों की तस्वीरें। अगर एक शेविंग क्रीम की भी इश्तिहार है तो उसमें भी एक औरत लगाई हुई, उसका भाई क्या काम है? एक सिगरेट का इश्तिहार है, उसमें भी औरत है आदमी के साथ खड़ी। और फिर उनकी ऐसी तस्वीरें हैं कि जिसके अंदर उनके सारे खदोखाल, उनका पूरा जो जिस्म का वो सारा मतलब नुमाया होता है, किस तरह के इश्तिहार हैं, कैसी इंटरनेट पे क्या क्या चीजें हैं, सब समझते हैं हम, फिर भी हम इन चीजों को बंद नहीं करते और इनसे इनको बंद करने को समझते हैं कि ये हम पता नहीं बैकवर्ड कहलाएंगे, और मॉडर्निज्म यही है कि हम इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करें। बाकायदा सबको पता है कि ऐसे जगह हैं जहां पे जिना होता है, वहां पे लोग जाते हैं जिना करते हैं, ऐसे जिना के अड्डे हैं, और इस मुल्क में तो ऐसी जगह हैं जहां पे जो मशहूर है, जहां पे पता है कि यहाँ पे जिना है, फिर वहां पे जाना, अपने आप को खुद हम उसमें डालते हैं ना फितने में। तो ऐसी चीजों से ही बचा जाए, ऐसी चीजों से ही दूर रहा जाए, ना वहां पे जाएं, ना ऐसी चीजें सुने, ना ऐसी चीजें बोलें, ना ऐसे माहौल में रहें, ना ऐसी मजलिसों में बैठें जहां कहीं भी ऐसी कोई चीज है जो आगे जिना तक ले जाने वाली है, जहां पे ऐसा कोई चांस भी हो सकता है। आप बहुत पाक साफ होंगे, लेकिन दुनिया सारी तो पाक साफ नहीं है ना। और अल्लाह ताला ने तो कुराने पाक में फरमाया, अपनी बहुत पाकी ना बयान करो, अल्लाह है जो जिसको चाहे पाक करे, वला तुज़क्कू अन्फुसकुम, बड़ा अपना तज़किया ना बयान किया करो। तो अल्लाह ताला हम सबको शैतान के शर से महफूज रखे। कोई अपने आप को ना, अपने आपको राहिब की वो बात बताई, इतना बड़ा राहिब था कि उसके ऊपर ट्रस्ट करके उन्होंने अपनी बहन को छोड़ा, उन लड़कों ने। अब वो कैसे फिसला, अल्लाह ताला इसी से हमें इस बात से ही समझाता है कि देखो किस तरह स्टेप बाय स्टेप शैतान लेकर जाता है इस रास्ते की तरफ, तो मत उसके फरेब में आना। और कैसे एक ऐसा आदमी जो अल्लाह अल्लाह करने वाला था वो भी कहीं फिसल सकता है। तो ये सा सबीला है, बुरा रास्ता है, ये बुराई का रास्ता है। तो कुरान हमें बुराई के रास्ते से, बदनिगाही से, बुरी चीजों से, इन सारे स्टेप से मना कर रहा है, ताकि एक पाकीजा माशरा हो, ताकि एक ऐसा माशरा हो जिसमें हया हो, जिसमें इज्जतें महफूज हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को जानता हूँ जो कयामत के दिन इतनी नेकियां लेकर आएंगे, इतनी कि तहामा के पहाड़ों के बराबर, यानी इतने ऊंचे वो पहाड़ है तहामा के, लेकिन अल्लाह ताला उनको गर्दोगुबार बना के उड़ा देगा। तो सहाबा डर गए, पूछा कि वो कौन लोग हैं, फरमाया वो लोग होंगे जो हमारे जैसे ही काम करते होंगे और हमारे जैसे ही होंगे, लेकिन जब वो तन्हाई में होंगे तो अल्लाह ताला की हुरमतों को पामाल कर देंगे, यानी हराम में पड़ते हैं, यानी तन्हाई में जब होते हैं तो फिर वो सब चीजें भूल जाते हैं, फिर वो काम करते हैं कि शैतान भी शर्मा जाए। तो अपनी तन्हाइयों को चेक करें, जहां हम तन्हाई में होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइवेसी चाहिए, आजकल हर एक कोई प्राइवेसी चाहिए, तो जब तन्हाई में होते क्या क्या देख रहे होते, क्या सोच रहे होते हैं, क्या सुन रहे होते हैं लोगों के सामने, फिर भी हम अपना भरम रखने के लिए कि लोग क्या कहेंगे तो हम थोड़ा हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो जानता है, अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या ये तन्हाइयां जिनको आज हम छुपा रहे हैं, क्या ये कयामत के दिन इस काबिल होंगी कि नशर हों। तो जिसने जिना से बचना है उसको अपनी तन्हाई को भी चेक करना कि तन्हाई मेरी पाक हो। तो और इसमें सिर्फ अल्लाह का खौफ है जो इंसान को रोक सकता है, वरना कोई चीज नहीं रोक सकती। इसलिए कि जब आपके हाथ में एक बेहयाई का टूल है जिससे आप एक क्लिक के ऊपर पूरी दुनिया की बेहयाई और ऐसी ऐसी चीजें देख सकते हैं कि खुदा की पनाह, फिर कौन रोक सकता है ऐसे इंसान को, कौन रोक सकता है, सिर्फ खुदा खौफी। और यहीं पे हमारा चेक आ जाता है कि हमारे अंदर खुदा खौफी कितनी। कभी कभी एकदम एक कोई इश्तिहार पॉप अप करता है जिसके अंदर कोई ऐसी बेहयाई की बात होती है, कभी कोई ऐसी ईमेल्स आ जाती हैं, कभी कोई ऐसी चीज आ जाती है, कौन है जो आगे बढ़ के उसको क्लिक करता है और किसको खुदा का खौफ रोक देता है, यही पता चल जाएगा ना। हम सबके सामने तो बनते हैं कि हम बड़े मुत्तकी परहेजगार फलां, लेकिन उस वक्त हमारा रवैया चलो देखते तो हैं, चलो चेक तो करें। मैं तो सिर्फ चेक करने के लिए कह रही हूं, देखूं तो सही, एक दफा देखने में क्या है, देखूं तो सही ये क्या है, इसका मतलब खुदा खौफी नहीं है। अल्लाहु अकबर। वला तक्तुलु नफ्स अल्लती हरम अल्लाहु इल्ला बिल हक, और ना तुम कत्ल करो किसी जान को जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया है। हराम किस जान को कत्ल करने को किया? हर एक की जान को लेना हराम है, किसी का भी खून बहाना हराम है, सिवाय किसके, जो बिल हक हो, हक के साथ हो, और हक के साथ जो हो उसकी सिर्फ जान ली जा सकती है। और वो कौन है? वो तीन ही सूरतें हैं हद की, और वो क्या, किसास में कत्ल करना यानी कत्ल के बदले कत्ल, या जो इंसान मुर्तद हो जाए, उसने अपना दीन बदल लिया। और ये भी ऐसे नहीं है कि कोई अपना मसलक किसी और मसलक का है तो उसको कह दें ये काफिर है तो इसको मारना शुरू कर दें, बल्कि इस्लामी रियासत जहाँ पे कायम हो, जहाँ पे इस्लाम का निज़ाम राए, जो वहाँ पे इस्लामी हुकूमत के खिलाफ जो बगावत कर दे, इस्लामी निज़ाम के खिलाफ बगावत करते वो। और नंबर 3, शादीशुदा जानी जो है इसकी सजा देखें, ये भी नहीं है कि सिर्फ गोली मार के इसको मार देना या इसको फांसी देना है, इसकी सजा है पत्थर मार मार के इसको मारो, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि ये वो आदमी है जिसको जीने का हक ही नहीं है, जो शादीशुदा जानी है, इसको जीने का हक इसका खत्म कर दिया इस्लाम ने। इसके अलावा भी ताजीरात हो सकती है, या ताजीर वो होती है कि एक तो ये हद हदूद है ना, ताजीर वो होती है कि जो काजी समझता है कि इसको ये सजा दी जानी चाहिए, जज के ऊपर छोड़ दिया गया, वो सजा खुद मुतय्यन करता है, वो ताजीर होती है। तो ये ऐसे जरायम होते हैं जिनकी सजा शरीयत ने नहीं फिक्स की हुई, हद जो है वो होती है जिसकी सजा शरीयत ने फिक्स कर दी है, ये बदल नहीं सकती। ठीक है, तो आप फरमाया कि किसी जान को कत्ल नहीं किया जा सकता मगर ये तीन सूरतें सिर्फ तब। अब इसके अंदर भी किसी को ये हक नहीं कि खुद अपने हाथ में ले ले कि मैं अब जाके कत्ल कर दूंगा, फलां मुर्तद हो गया मैं उसको कत्ल कर दूंगा, या फलां शादीशुदा जानी है अब मैं इसको कत्ल करने, या फलां ने मेरे फलां को कत्ल किया तो इसलिए मैं इसको कत्ल करने का, नहीं, ये भी अदालत फैसला करेगी और वो गवाहियां होंगी और वहां पे सारा मुकदमा चलेगा और फिर वो उसके बाद फैसला करके और खुद उसको सजा देगी। ये स्टेट का काम है, ये इंडिविजुअल्स का काम नहीं है। अगर इंडिविजुअल्स अपने हाथ में लेंगे तो अनार्की फैल जाएगी उस जगह पर और वो मुल्क का निजाम ही खत्म हो जाएगा, जहां पे हर कोई उठा के किसी ने किसी को कुछ समझ लिया, उसने वो कुल्हाड़ा उठाया, छुरियों के वार कर दिए, किसी ने किसी को गोली मार दी, ये क्या बात है। तो हराम है किसी की भी जान लेना, बल्कि इस इसको तो आप सल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा के खुतबे में भी फरमाया था ना कि तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जतें इसी तरह हराम है जैसे ये आज का दिन है, ये जगह है, इस तरह से हराम है। काबा की कितनी इज्जत, हम उसको कितना मुकद्दस समझते हैं, उसकी कितनी ताजीम करते हैं, उसको कितना एहतराम है, इस तरह ही एहतराम है इंसानी जान का, इंसानी इज्जत का, इंसान दूसरे इंसान के माल का। अब वो कोई हक नहीं है किसी के जान लेने का, किसी की इज्जत पे हमला करने का, किसी के माल को स्नैच करने का। वमन कुतिला मजलूमन, और जो कत्ल किया गया जुल्म के साथ, यानी वो हक नहीं था, बेचारा मजलूम था, उसको कत्ल कर दिया गया, फकत जालना लि वली सुल्ताना, तो हमने उसके वली के लिए सुल्तान दे दिया, यानी सुल्तान मतलब है गलबा, यहाँ पे खास तौर पे सुल्तान का मतलब है इख्तियार, अथॉरिटी दे दी है उसको। क्या अथॉरिटी दे दी है कि वो चाहे तो कत्ल का बदला कत्ल ले ले, चाहे तो दियत ले ले, चाहे तो माफ कर दे। तो ये अल्लाह ताला ने उसको वली को दी है ये इख्तियार, ये अथॉरिटी। स्टेट को अब अथॉरिटी नहीं है कि स्टेट किसी को माफ कर दे। ये जो हमारे यहाँ है ना कि सदर ने माफ कर दी, उसकी उसकी रहम की अपील उसने की थी, उसकी फांसी उसको माफ कर दी, या वजीर आजम ने माफ कर दी, ये वो नहीं कर सकते, सिर्फ वली कर सकता है। तो ये अल्लाह ताला ने वली को दिया, मगर फला युसरिफ फिल कत्ल, मगर वो कत्ल अगर कहता है कि कसास मैंने लेना है, तो कत्ल के अंदर भी इसराफ ना हो, ज्यादती ना हो। यानी ज्यादती कैसे होती है कत्ल के अंदर कि हाँ आपने हमारा इतना बड़ा कोई बंदा मार दिया, पुराने जमाने में ये होता था कि हाँ आपने हमारे सरदार को मारा है तो अब हम आपके आम बंदे को, एक को थोड़ी मारेंगे, अब हम आपके तीन को मारेंगे, या किसी को किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो अब उसके बदले के अंदर कत्ल भी करेंगे और उसका मुसला भी करेंगे, उसकी लाश को यानी उसके मतलब लाश की बेहुर्मती भी करते थे, उसके अज़ा काट देते थे और ऐसे करते थे। तो ये भी ज्यादती है, इसी तरह ये भी ज्यादती है। ज्यादती की कई किस्में हो सकती हैं, ये भी ज्यादती है कि दियत भी ले ली और उसके बाद गुस्सा फिर भी नहीं ठंडा हुआ हुआ तो फिर उसको जाके मार भी दिया, ये भी ज्यादती है। और ये भी ज्यादती है कि कत्ल किसी ने किया था और मार किसी और को दिया, ये भी ज्यादती है। तो ज्यादतियां कई किस्म की हो सकती हैं। तो ठीक है, इस वली को अल्लाह ताला ने इख्तियार तो दिया है तो ज्यादती ना वो करे लेकिन कत्ल करने में, इन्नहु काना मंसूरा, बेशक वो है मदद किया हुआ। शरीयत उसका साथ देती है जब तक कि वो मजलूम है, मकतूल जो है जाहिर है उसके मजलूम है, उसको उसके ऊपर जुल्म हुआ है, उसके वरसा के ऊपर जुल्म हुआ, तो अल्लाह ताला उनके साथ है, उनके मददगार है जब तक कि वो मजलूम है। लेकिन अगर वो जालिम बन जाए, वो ज्यादती करें, तो फिर उनके साथ मदद नहीं है। ठीक है, तो मकतूल के और उसके वरसा की मदद कैसे होगी कि उनके साथ स्टेट खड़ी होगी, वो उनको उनका हक दिलाएगी। वला तकरबू माल यतीम, और माले यतीम के करीब भी ना जाना, जैसे जिना के नहीं करीब जाना, इस तरह यतीम के माल के करीब भी नहीं जाना। करीब किस तरह नहीं जाना, यानी उसको हड़प करने के लिए पहले से खा लो, इससे पहले के बड़ा हो जाए और अपना माल ले जाए, इसके अंदर कुछ नुकसान इसका हो जाए या उसको बेपरवाही के साथ उड़ा दें, बहुत सारी सूरतें हैं यतीम के माल को में ज्यादती की। तो यतीम के माल के करीब भी ना जाओ, क्योंकि देखें माल की हिफाजत जो है ना, जैसे जान की हिफाजत के बाद माल की हिफाजत, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। हर एक का माल दूसरे पर हराम है, ये नहीं कि किसी और का माल आप बेशक उसके करीब चले जाओ, किसी का भी माल स्नैच करो, नहीं। लेकिन यतीम के माल की खास तौर पे क्यों बात की गई? हराम तो सबका ही छीना, नुकसान देना, उसका माल हड़प करना सबका ही हराम है। यतीम की इसलिए कि यतीम बेचारा तो खुद अपने लिए खड़ा ही नहीं हो सकता। अल्लाह ताला कमजोरों का वकील है, अल्लाह ताला कमजोरों के लिए जोरदार तरीके से हमें हिदायत देता है। याद रखना, किसी कमजोर को कमजोर ना समझना कि इसके पीछे अल्लाह है। इसीलिए देखें औरतों के हकूक की जब बात आती है, इसीलिए औलाद के जब हक की बात आई, इसीलिए जब बूढ़े वालदैन के हक की बात आई, इसीलिए जब यहाँ पे बतीन की हक की बात आई, तो फिर अल्लाह ताला उनके लिए वकालत करता है, क्योंकि उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। उनके साथ कोई ज्यादती भी कर ले, किसी को क्या पता चलना। अब कोई यतीम का कोई गार्डियन है, क्या हेरा फेरियां कर रहा है, किधर से खुर्दबुर करके खा भी ले, कह दे कि मैंने इसके ऊपर ही खर्च कर दिया, किसी को क्या पता चलेगा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उनके लिए, अल्लाह उनकी सपोर्ट में खड़ा हुआ, वो अल्लाह के डर की वजह से। याद रखना, किसी कमजोर के ऊपर ज्यादती ना कर देना, क्योंकि जो ताकतवर है, जिसका अपना माल है, देखें आप तो उसका नहीं लेके कुर्दबूत करते, आपको पता है ये आज कुछ किया तो कल को ये मेरी गर्दन पकड़ लेगा, अदालतों में मुझे घसीटेगा या मुझे पकड़वा देगा, तो वहां पे इंसान डरता है। लेकिन जहां पे ये यतीम लोग बच्चे हैं, बेचारे यतीम कौन होता है जो नाबालिग है, बच्चा है, उसका बाप फौत हो गया, उसको किसने पूछना है, उसका कौन सा परेशानी हाल है। अब उसका चच्चा या उसका ताया या उसका जो भी कोई उसका ऊपर उसका गार्डियन है, अब उसके हाथ में सब कुछ होता है। अब वो जैसे भी इस चीज को इधर उधर कर दे, माल को, उसकी कोई जायदाद है यतीम की या उसको कोई भी पैसा उसके वालदैन ने छोड़ा हुआ उसके लिए, अभी वो खुद तो देखने के काबिल नहीं, उसको तो ये भी नहीं पता मेरा माल है कितना या कहाँ है या इसके अंदर कुछ ज्यादती कोई कर रहा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुमने उसके करीब भी नहीं जाना, इल्ला सिवाय, सिवाय इस चीज के कि बिल्लती ही आसन, मगर जो बेहतरीन है, यानी उस चीज तब तुम करीब जा सकते हो उसके माल के, कि जब मसलन है उसके माल की प्रोटेक्शन करनी है, उसको कहीं लगाना है, इन्वेस्ट करना है, या उसकी कहीं और हिफाजत से उसको रखवाना है या कुछ है, उस वक्त आप उसके माल को अपनी यानी उसके माल को में तसरुफ कर सकते हो। हत्ता यबलुगा शुद्धा, जब तक कि वो बलूगत को ना पहुंच जाए तब आप उस, तब तक आप उसके माल को अपनी कस्टडी में लेके और फिर उसमें जो भी आपने उसकी हिफाजत के लिए इंतजाम करना है या जो उसको बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो आप कर सकते हैं। जब वो जवानी को पहुंच जाए, बलूगत को पहुंच जाए, तो फिर उनका माल उनको उनके हवाले कर दिया जाए। वह औफू बिल अहद, और अगली इंस्ट्रक्शन है कि अहदों को पूरा करो। एक माशरा जहां पे अहद की पासदारी नहीं होती वहां पे कोई ट्रस्ट नहीं होता, कोई किसी पे भी नहीं भरोसा करता। सब लोग क्या कहते हैं इसकी क्या, यहाँ पे तो जैसे हमारे मुल्कों में भी है, यहाँ पे क्या किसी पे भरोसा करना, ये मेरा माल लेके भाग जाएगा, ये हमें लूट लेगा। हर कोई दूसरे को शक की नजर से देख रहा है, किसी का दूसरे पे भरोसा है ही नहीं। हर कोई दूसरे को चोर लुटेरा समझता है क्योंकि फ्रॉड इतना है, क्योंकि करप्शन इतनी है, ट्रस्ट खत्म है, इसलिए कि वादे का पास ही नहीं। कहते कुछ है होता कुछ और है, वायदे करते हैं और निकलता कुछ और है। कहते हैं ये प्लॉट बेच रहे हैं आप पैसे दे देते हैं, उसके बाद वहां पे कोई जमीन ही नहीं होती, वो आगे 10 जगह बिक चुका होता। तो कितने वादे की पासदारी कितनी जरूरी है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी और कौमी लेवल के ऊपर भी, पब्लिक में डीलिंग में भी। और वादे से मुराद सिर्फ वो वादे नहीं जिसमें आपने साइन किया हो, सिर्फ वो नहीं है वादे, एवरी कमिटमेंट जो आप करते हैं वो वादा है। एक आपने किसी से भी कोई कमिटमेंट किया ना उसको निभाएं। इवन ये छोटी छोटी कमिटमेंट्स कि मैं आपके घर आऊंगी, तो फिर अनलेस के कोई उजर हो और फिर आप उसको बयान कर दें, उसके अलावा फिर उसको नहीं तोड़े। कमिटमेंट्स या वादे, एक तो अल्लाह के साथ हमने वादा किया हुआ ना, कलमा पढ़ के हमने अल्लाह ताला से एक अहद कर लिया हुआ कि हम उसकी मानेंगे, वो वादा भी निभाना, और इंसानों के साथ भी वादे भी निभाने, इल्ला ये सिवाय एक सूरत है कि कोई गैर शरई वादा कर लिया। मसलन है कि आपने एक वादा कर लिया कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, अब मैं तुमसे कभी कलाम नहीं करूंगी, या आपने ये वादा कर लिया अपने आप में कि मैं अब कभी भी नहीं, मैंने किसी की हेल्प करनी, मुझे तो बड़ा कुछ सबक मिल गया है लोगों की हेल्प करने से, अब तो मैं कभी नहीं। ऐसे वादे की पाबंदी नहीं करनी चाहिए, ये इनको वादों को तोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो जो इनमें कोई ऐसी कबाहत नहीं, उन वादों को पूरा करना, चाहे वो हुक्मरान कहें। अब कितने लोग वोट लेने के लिए कितने वादे कर लेते हैं, तो पाबंदी करनी जरूरी है। अगर नहीं कर सकते तो फिर मत वादे करो, इस कदर वादे होते हैं और उनमें से एक भी नहीं निभाया जाता, इसीलिए फिर लोग ट्रस्ट नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसमें अहद की पाबंदी नहीं उसका कोई दीन नहीं है। हम अपने आप को बड़ा दीनदार कहते हैं ना, बड़े दीनदार हैं हम, क्योंकि हम कुरान जो पढ़ रहे हैं तो दीनदार कहलाने लगे, स्काफ ले लिया बड़े दीनदार हो गए। फरमाया जिसमें अहद की पाबंदी नहीं उसका कोई दीन ही नहीं है, तो जिसका दीन ही नहीं वो जन्नत में कैसे जाएगा। फिर इन्नल अहद काना मसूला, जो अहद है इसके बारे में पूछ गिछ होगी, इसके बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। और इस सवाल करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सवाल किया जाएगा और उसके बाद कुछ बात नहीं, सवाल किए जाने का मतलब ये कि जैसे आप एक एक धमकी के तौर पे इसको समझे, जैसे माँ बच्चे को भी कहती है ना, अच्छा मुझे आने दो मैं फिर आके तुमसे पूछती हूँ, ये है। यानी सवाल किया जाने का मतलब इसका हिसाब किताब होना, अल्लाह ताला ने पूछना है वादा निभाया था कि नहीं, तो ये नहीं कि आप वादे करके उसके बाद खुद ही भूल ही जाए। इवन हमने बच्चों से कई वादे किए होते हैं, तो वादे मैं आई प्रोमिस यू आई विल टेक यू देयर, उसके बाद कोई याद ही नहीं वादा किया, और बस उस वक्त उसको जरा थोड़ा सा बहलाने के लिए, पर वो बच्चे भी ट्रस्ट नहीं करते अगली दफा। तो वादा किसी से भी हो, वादे की पूछ गिछ है, यही चीज हमारे लिए काफी होनी चाहिए कि हम वादों को निभाएं, चाहे दूसरा भूल भी जाए हमें याद रहे कि हमने वादा किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी प्यारी मिसाल है ना वादों को निभाने की, जो कमिटमेंट कर लेते थे ना वो उस कमिटमेंट को निभाते थे।